Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली, ये दोष किस पर डाल दिया? परोक्ष, जो भगवान है, जो आत्म तत्व है, सुना है, उसके ऊपर डाल दिया। माने ये ज्ञान जो है ना, वो विशेष ज्ञान नहीं है, ये सामान्य बोध है। लेकिन बोध तो है, पता तो है। हमारे जीवन में तीन चीजें होती, जानकारी, मान्यता और अनुभव। जानकारी माने इन्फॉर्मेशन, सूचना। जैसे हम सुनते हैं तो बहुत सारी जानकारियां होती हैं, हर जानकारियां मान्यता में नहीं बदलती हैं। हम जानी हुई चीज को मानते नहीं हैं। बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, आप बोलते भी तो है ना कि भैया हम मानते नहीं हैं, हम ईसाई धर्म के बारे में जानते तो है, सुना है, लेकिन मानते नहीं हैं। बहुत सारी चीजें हैं। जानने के लिए बुद्धि की जरूरत है, मानने के लिए आस्था, श्रद्धा की जरूरत है। आप जान रहे हैं, आप बुद्धिमान हैं, ग्रहण धारण करने में आप समर्थ हैं, आप जो भी बातें सुन रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आस्था ना हो, श्रद्धा ना हो, तो वो चीज मान्यता में नहीं आती। मान लिया, या श्रद्धा है हमारी, हम मानते हैं, ये भगवान है, मान लिया है। और मानने के बाद फिर मान्यता जीवन में आचरण बन जाती है, श्रद्धा हमेशा आचरण बनती है। आप कोई चीज मानते हैं, अब वो चीज आपके जीवन में आएगी। हम अपने पिता को मानते हैं, उनके वचन हमारे जीवन का आचरण बनेंगे। और नहीं मानते हैं तो आचरण नहीं बनेंगे, वो कुछ भी बोलेंगे तो हम सुनेंगे नहीं। ये जो सुनना है ना, वो मान्यता है, आस्था है। और जब उपदेश हमारे जीवन का आचरण बनते हैं, तब हम अनुभूति के तरफ यात्रा करते हैं। मान्यता हमें ले जाती है अध्यात्म की ओर, और योग्यता हमें ले जाती है अनुभूति की ओर। माना अपने, और डॉक्टर के पास गए, आंखें खराब थी, आपके मन में विश्वास था कि हम दिखाएंगे डॉक्टर को तो ठीक हो जाएंगे, ये तो मान्यता है। और वहां जाने के बाद आपने दवा ली और आंखें आ गई, और आंखें आने के बाद आप देखने लगे, ये अनुभव है। आंखें ठीक होने के बाद हम देख लेंगे, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये हमारी मान्यता है, आस्थाजन्य है, ये श्रद्धाजन्य है। और एक बार आपने मान लिया तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा भी लेंगे, और दवा लेने के बाद आपकी आंख ठीक होगी, आंख ठीक होने के बाद आपको दिखाई देगा, ये अनुभव है, आस्था है संत के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति। आपने मान लिया, अब आप गुरु के पास जाएंगे तो आप उपाय करेंगे, आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्याशितव्य, और आप धीरे 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 योग्यता की ओर बढ़ेंगे, और योग्यता आपको ले जाएगी आंख ज्ञान में ले जाएगी। और जब ज्ञान की चक्षु खुलेगी तो आपको आत्मज्ञान होगा। इसलिए जानकारी जो है एक इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, और वो जानकारी हमारी मान्यता बने। इसलिए कई बार आप बोलते भी हैं ना कि भैया ये जो बोल रहे हैं ना, मान लो, ऐसा बोलते हैं, सुन लो ऐसा नहीं बोलते हैं, मान लो ऐसा बोलते हैं। ये सुनना जो है ना, वो एकत्रित करती हैं स्मृतियां, लेकिन यदि हम मानेंगे नहीं तो अनुकरण नहीं बनेगा। इसलिए हम बोलते हैं भैया ये मान लो, सुन तो रहे हो लेकिन मान लो। दुर्योधन में जानकारी है लेकिन मान्यता नहीं है, क्योंकि आस्था नहीं है। इसलिए परोक्ष वो सोच रहा है कि कोई देवता हमारे अंदर हैं, और जो इस जीवन का संचालन करता है, हमारे जीवन में ये दोनों चीजें हैं। हमारे जीवन में ज्ञान और ज्ञान की विस्मृति, एक तरफ ज्ञान होता जाता है, दूसरी तरफ ज्ञान मिटता जाता है। कोई ज्ञान संस्कारों में बदलता है और वो संस्कार फिर स्मृतियों को निर्मित करते हैं, लेकिन बहुत सारे संस्कार स्मृति को पैदा करने में समर्थ नहीं होते। ज्ञान तो है लेकिन वो स्मृति को पैदा नहीं कर रहे। तो भगवान ने कहा कि मैं उसका लोप करता हूं। ज्ञानोदय भी भगवान के कारण है और ज्ञान का अस्त भी भगवान के कारण, लेकिन हमें दोनों चीजें याद रखना है। ओहो, कोई चीज याद नहीं आ रही हो ना तो याद आना चाहिए भगवान। ओहो, अब ये विस्मृति के रूप में भगवान है। उस समय हाय हाय करने की जरूरत नहीं है, उस समय याद करना चाहिए परमात्मा को। ओहो, ये स्मृति में परमात्मा है, याद आई कोई बात। और कोई बात याद नहीं आई तो उस समय भी भगवान को याद करे, ये विस्मृति में परमात्मा है। इसलिए श्रुति कहती है तम देवा सर्वे अर्पिता, उसी समष्टि प्राण तत्व के कारण हमारी सारी जो इंद्रियां काम करती हैं। यहां उदय और अस्त ये समष्टि भी हैं बाहर का, और उदय और अस्त हमारे भीतर का भी, आंख खुली ये उदय है और आंख बंद हो गई तो अस्त, और ये अस्त और उदय ये निरंतर चलते रहते हैं। हमारी आंख बंद होती है, खुलती है, बंद होती है, खुलती है, ये अस्त और उदय, ज्ञान का अस्त और ज्ञान का उदय। इसका जो मूल तत्व है वो प्राण तत्व है, प्राण के कारण हमारी आंख खुलती है, प्राणों में जो शक्ति है उसी के कारण हमारी इंद्रियां चलती हैं। एक बड़ा सुंदर उपदेश किया है उपनिषदों में, एक कोई शिष्य है, गुरु ने उनको बोला कि अन्नम ब्रह्म इति उपासित, अन्न ब्रह्म है या ऐसी उपासना करो। ये वेदांत जो है ना, सनातन धर्म बहुत मजेदार, लोगों को समझ में नहीं आता। लोग सोचते हैं ये कैसा धर्म है, अन्न को भी ब्रह्म मान रहा है। मनो ब्रह्म इति उपासित, प्राणो ब्रह्म इति उपासित, या तो जड़ चेतन सारी चीजों को ब्रह्म तत्व बताया गया है, ब्रह्म तत्व। बोले बोले कि ये अन्न ब्रह्म कैसे हैं? अब आप अन्न ब्रह्म मानेंगे ना तो आपका भाव ही बदल जाएगा अन्न के प्रति, अन्न के प्रति। अच्छा, जब अन्नम ब्रह्म इति उपासित है तो अन्न का अर्थ क्या है? अति इति अन्न, जो खाते हैं, तो क्या आप खाते वही अन्न है? जो आप खाते वही अन्न है, जो दूसरा खाता है वह अन्न नहीं है? अच्छा, ये शरीर अन्न है कि नहीं? आप जो शाक आदि खाते हैं, सब्जी दाल चावल, वो भी अन्न है, और ये शरीर को भी कीड़े मकोड़े खाते हैं, ये भी क्या है? अन्न है। एक महात्मा को किसी ने बोला कि आप मरने के बाद आपको क्या किया जाए, क्योंकि गंगा जी में डालने के लिए अभी सरकार कानून लागू करने वाली है, क्योंकि पानी नहीं है नदियों में, और जब पानी नहीं और उसके अंदर यदि आप डालेंगे तो वो पानी को और गंदा कर देगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। पुराने जमाने में पानी बहुत होता था, बहुत सारी मछलियां हुआ करती थी, क्या करना चाहिए? महात्मा ने कहा भैया हमको नहीं जलाओ। बोले जलाएंगे तो कोई फायदा नहीं, राख हो जाएगा शरीर, हम चाहते हैं कि हमारे शरीर का भंडारा हो जाए। शरीर का भंडारा मतलब ये मत सोचना कि मरने के बाद साधु महात्मा को खिला दो, ऐसा नहीं। भंडारा माने ये शरीर जो है ना, इसको कीड़े मकोड़े खा ले, पक्षी खा ले, बोले इसका भंडारा हो जाए, भंडारा। अरे ये शरीर काम आ जाए, बोले किसी के खाने के काम आ जाए, अन्न है, अन्न, अन्नम ब्रह्म। एक महात्मा थे कि भैया आप थोड़े दिनों के बाद हमारा भंडारा होने वाला है। भगत ने पूछा महाराज किसका भंडारा? अरे बोले मछलियों का भंडारा होने वाला है। मछलियों का भंडारा होने, और बड़े प्रसन्नता से, बहुत खुशी कि भैया ये शरीर का अब क्या होगा, अन्न है ना, अन्न है, अन्नम ब्रह्म। समझ में आया कि नहीं? आप दुनिया में बहुत सारी दुनिया ही तो अन्न है ना। अच्छा आप पांच भूत खाते हो कि नहीं? आप पृथ्वी खाते हैं, ये आप सब्जी दाल चावल ये क्या है? पृथ्वी है, आप पृथ्वी खाते हैं। अच्छा जल खाते हैं कि नहीं? खाबो जल खाबो, बंगाली बोलते हैं कि नहीं, जल खाबो चाय खाबो। क्या आप उनके घर में जाएंगे बंगाली के तो आपको ये नहीं पूछेगा चाय पियोगे, ऐसा नहीं पूछेगा, बोलेगा चाय खाबो, तो आप ये सोचना है कि चाय पीना है। तो आप ये जल पीते हैं ना, तो खाते कि नहीं? जल भी खाते हैं, थोड़ा बंगाली में बोलते हैं हम लोग, चाय खाते हैं, ये जल पृथ्वी ये आपका भूत तत्व है उसको खाते हैं। आप वायु खाते हैं कि नहीं? अरे सबसे कीमती तो वही चीज है, सबसे ज्यादा क्या खाते हैं आप? आप जल कम खाते हैं कि वायु कम खाते हैं? ज्यादा जल खाते हैं कि वायु ज्यादा खाते हैं? सबसे ज्यादा तो वायु खाते हैं, दिन भर चलते फिरते उठते बैठते हम क्या खाते हैं? बिना खाए हम रहते हैं निरंतर, ये सिलेंडर चालू ही है। देखो भगवान की कैसी, जहां भी जाए वहां आपको मिलती रहती, सर्वसुलभता, 24 घंटे जिसको आपको खाना है उसकी 24 घंटे सप्लाई, हवा हर जगह पर मिलती है आपको, हर जगह पर, क्योंकि आपको हर जगह पर चाहिए ना, हर जगह पर चाहिए। आप ऐसे वातावरण में प्रवेश कर जाए जहां हवा ही ना हो, राम राम। हम हवा भी खाते हैं और हम अग्नि भी खाते हैं। आप जब भोजन करते हैं तो आप बोलते भैया गरम गरम चाय, गरम गरम रोटी होना चाहिए, तो आप गरम गरम रोटी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप? अग्नि खा रहे हैं, चाय पी रहे अग्नि खा रहे हैं आप, और सबसे बड़ी अग्नि तो पेट के अंदर है, जठरा अग्नि। अग्नि को अग्नि चाहिए, पृथ्वी को पृथ्वी चाहिए, जल को जल चाहिए। इस शरीर के अंदर पृथ्वी है, इसको पृथ्वी दो, इसके अंदर जल है जल दो, इसके अंदर वायु है वायु दो, इसके अंदर अग्नि है अग्नि दे दो, तभी अग्नि रहेगी अंदर। बाहर की अग्नि न मिले तो ये अग्नि भी नमो नमः। आप जब हिमालय में जाना और आप कपड़े पहनते हैं, अग्नि के सामने बैठते हैं, ओहो इसको क्या दे रहे हैं आप? अग्नि दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर की अग्नि बुझने जाए। आप आकाश खाते हैं कि नहीं? हाँ आकाश के बिना मेरे को लगता है कि जैसे प्राण तत्व है ना वैसे ही है ये जो आप बोलते हैं कि अटैक आ गया। क्या है अटैक? ये आकाश तत्व की कमी है, ब्लॉकेज आ गए। ये ब्लॉकेज आ गए तो क्या है? अवकाशम ददाती थी आकाश, जो खाली जगह देता है ना वही आकाश है। और जहां खाली जगह कम हो गई, ज्यादा भीड़ हो गई, ज्यादा भीड़ हो गई, अब बहुत ज्यादा लोग आ गए अंदर, खाली खाली अच्छा लगते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। एक बार तो भागवती कथा में इतनी भीड़ हो गई, कृष्ण जन्म के दिन लोग लूटने लगे, कृष्ण जन्म के दिन लूटते तो हैं लोग, वहां लूटने लुटाने के लिए तो आते हैं, क्योंकि जो लूटने वाला आने वाला है कृष्ण भगवान, लूटो लूटो लूटो। एक माया हमारी भागवत की पोथी ले जा रही थी। तो मैंने कहा मैया ये क्या कर रही हो? बाबा बोली मेरे को कुछ नहीं मिला है। अरे मैंने कहा ये मेरी पोथी है पढ़ने की। अरे बोले तुम दूसरी रख लेना। मैंने कहा आपको दूसरी दे देंगे, इसके पर नोट वगैरह लिखे हुए हैं। अरे बोले नहीं तुम बाद में लिख लेना। कुछ तो मिल जाए, भगवान के यहां आए कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। हमने कहा हम ही को ले जाओ तुम। ये खालीपन अच्छा लग रहा है, बहुत खाली 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 अच्छा लगता है, खुल्लापन। या हमारे हाथ में खुल्लापन हो, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, ये अटैक आता है इसलिए तो आता है, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई भैया, बहुत ज्यादा। और ये अंदर बहुत ज्यादा भीड़ इसलिए हुई कि बाहर बहुत भीड़ हो गई, हमारी दिनचर्या बहुत तनावपूर्ण हो गई, बहुत तनाव बाहर, बहुत तनाव तनाव तनाव। और उसका दबाव किस पर पड़ता है? फिर बाहर की भीड़ का प्रभाव हमारे अंदर पड़ जाता है। एक महात्मा जी थे अपने आश्रम में, वो बहुत एक मजेदार बात बहुत मजेदार बातें बोलते थे। वो रामदेव जी महाराज जी के समय भक्तमाली जी बहुत सुंदर महात्मा, पता नहीं एक बार गए अयोध्या जी में जाके महंत बने फिर नहीं आए। हमारे महंत जी महाराज, हमारे स्वामी गोविंदानी जी महाराज बड़ा प्रेम करते थे उनसे, हम सब प्रेम करते थे, बहुत फक्कड़शाली शादी थे। एक दिन वो बोले कि भैया नरक नरक तुम लोगों ने देखा है? हमने नहीं देखा। सबको पूछा भैया देखा है तुमने? गोष्ठी में बैठते थे हम लोग, गोष्ठी होती थी, आजकल तो कम हो रही। 30-40 महात्मा बैठते थे, गोष्ठी विचार करते थे महाराज जी की पुस्तकों की, बड़ा आनंदपूर्ण वातावरण। सबने बोला नहीं देखा नहीं देखा। अरे बोले हम अभी नरक देख के आए हैं। बोले पहले जान तो लो नरक क्या है। बोले क्या है? बस में 50 लोग बैठने की कैपेसिटी है लेकिन उसमें 100 बैठ जाए। बोले वो नरक है। आपके ट्रेन के डब्बे में कितने लोग बैठ सकते हैं? बोले 100, उसमें 200 घुस जाए, गर्मी का समय हो। बोले वही नरक है और क्या है। जो आप नरक नरक सुनते हैं कि नहीं, वो ऐसा ही ऐसी जगह है, छोटी सी जगह में सब लोगों को भर दिया, अब वही नरक है, जाओगे कहां? यही तो है, ये भीड़ है, भीड़ भीड़, ये विचारों की भीड़। आप दिमाग में इतनी विचारों की भीड़, और जहां विचारों की भीड़ होगी ना वहां टकराव होगी, एक दूसरे से भिड़ेगा लड़ेगा। जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो ना तो वहां पर एक्सीडेंट होगा ही। बोले बहुत ज्यादा विचारों की भीड़ होगी दिमाग में, गए काम से। अब बहुत ज्यादा बाहर दुनिया की भीड़ हो गई, बहुत ज्यादा आसक्तियां हो गई, तनाव हो गए, डिप्रेशन, बहुत भीड़ बढ़ गई। अब आपको ऐसा लगता है कि ट्रैफिक में फंस गए हम, आपकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई, न आगे हो रहे और न पीछे हो रही, चारों ओर हॉर्न बज रहे हो, आप क्या करोगे? परेशान हो, ऐसे ही है ये हमारे दिमाग कंफ्यूज, ऐसे ही है। और इस भीड़ में ही तो आकाश तत्व की कमी होने का ही नाम तो भीड़ है। आकाश तत्व की कमी का नाम ही भीड़ है। इसलिए हमेशा अपने को आकाश तत्व की प्रचुर मात्रा बनानी चाहिए। अनपेक्षा सुचिर दक्ष, अभी बता रहे थे ना, यही तो है अपेक्षा। इतनी सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत भीड़ हो गया, दिमाग में उलझने पैदा हुई, इच्छाएं वासनाएं जलन घृणा ईर्षा, अभी मन में खालीपन नहीं है, आकाश तत्व की कमी हो गई है। इसलिए हमारे वेदांत ने सबसे पहले बताया आत्म तत्व से आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश असंभूतः। आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, बहुत मजेदार बात है, आत्मा से आकाश पैदा हुआ। इसलिए परमात्मा का साक्षात जो बेटा है ना वो कौन है? आकाश। और ये जेनेटिक चीजें हैं जो आपके डीएनए में होता है ना, वो आपके बेटे में आ जाता है, नहीं आता है? कई बार आप देखेंगे शकल सूरत, वो मुस्कुरा भी देता है तो बाप की तरह, कभी आपने देखा है सर? वो बोलता भी है तो बाप की तरह, हेलो हेलो करेगा तो सामने वाले बोलेगा ठीक छो सारू छो बोलेगा, वो सोचेगा कि बाप ही बोल रहा है, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं उसका बेटा बोल रहा हूं। ये डीएनए का प्रभाव। वो परमात्मा से आकाश बना तो परमात्मा का डीएनए क्या है? व्यापक। परमात्मा का डीएनए वो कणकण में है, वो निराकार है, वो अरूप है, वो अरस है, जो गंध रहित है उसमें गुण नहीं है, और वो सारा डीएनए में आ गया। डीएनए किस में आ गया? आकाश में। आकाश में कोई रूप नहीं है, रंग नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं है, लेकिन वो पैदा हुआ है ना, वो पैदा हुआ, थोड़ा तो डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा तो वहां। बोले एक डिफरेंट है। क्या? बोले शब्द गुणकम आकाशम। केवल एक गुण है, एक गुण है, केवल एक ही गुण है, आकाश का एक ही गुण माना है, और वो गुण है शब्द। वो तो निर्गुण है, बिल्कुल बिल्कुल भगवान की तरह है, भगवान की तरह है। लेकिन एक गुण है उसमें, भगवान नहीं है वो, बस बस उसका बेटा है। बोले क्या है उसके अंदर अतिरिक्त परमात्मा से? बोले एक गुण है और वो है शब्द गुण। और इसीलिए अन्य इंद्रियों से जाना नहीं जाएगा, केवल वो शब्द स्मरण करेगा। ठीक है, इसलिए आकाशवत श्रुति को दृष्टांत मिला। भाई आपको भगवान के बारे में कुछ सूचना देनी है, भगवान के लिए आपको दृष्टांत देना है, तो दृष्टांत वही बनेगा जो भगवान की तरह। बोले आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। परमात्मा कैसे हैं? बोले तुम जानते हो ना आकाश? बोले हाँ हाँ जानते हैं, जो खाली खाली सब जगह पर रहता है। बोले वही वैसा ही आत्मा है आकाशवत। ये नहीं बोला कि पृथ्वीवत, जलवत, अग्निवत, वायुवत नहीं बोला है, क्योंकि ये तो परमात्मा से फिर परंपरा बड़ी ना, फिर परमात्मा से आकाश हुआ, आकाश से अग्नि हुई, अब थोड़ा पोता हो गया ना, ये परमात्मा का पोता हो गया, डीएनए बदल गया थोड़ा, अभी बाप का डीएनए आ गया। अग्नि में एक अपना आ गया, एक अग्नि का आ गया, अग्नि का शब्द आ गया, आकाश का शब्द आ गया और अपना रूप आ गया, और अग्नि से वायु पैदा हो गई, उसमें तीन आ गए, स्पर्श एक बढ़ गया, वायु से जल पैदा हो गया, रस बढ़ गया और ये पृथ्वी आ गई। तो हमारा जो विचरण है किसमें है? पृथ्वी में विचरण है। तो कितना जनरेशन गैप है? परमात्मा और ये जीवात्मा में इतनी जनरेशन गैप आ गई, और वो जितनी जनरेशन गैप आती जाएगी उतना ही गैप आएगा। अब अपने को क्या करना है? वो लौटना है अपनी परंपरा में, आकाश बनो। परमात्मा से निकट होने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है हम अपने जीवन को आकाश बना ले, बस खाली। इसलिए बोलते हैं निर्विकल्प, निर्विचार, हमारा दिमाग खाली हो, खाली। आकाश बनने का अर्थ यही है, आकाश में क्या है? कुछ नहीं, खाली। इसलिए आकाश बनना मतलब परमात्मा के निकट होना है, और जितना हम आकाश बनेंगे उतना ही ज्यादा सुखी होंगे। ये जितने सारे दुख हैं ना, इसी के तो दुख हैं, पृथ्वी होने का दुख है, जल होने का दुख है, अग्नि होने का दुख, वायु होने का दुख, हम बोलते नहीं पंचभूत। इसलिए आकाश तत्व ही शरीर के अंदर है, और इसीलिए उस आकाश तत्व की रक्षा करना जरूरी है। इसलिए आकाश होना चाहिए, आकाश आकाश को खाता है, आकाश आकाश को खाता है। अन्नम ब्रह्म इति उपासित, मैं वो बात बोल रहा था, अन्नम ब्रह्म उपासित। तो अन्न तो पृथ्वी पे अन्न है, तो वो पृथ्वी नहीं जो आप भोजन कर रहे हैं, ये सारी पृथ्वी क्या है? अन्न है, कोई ना कोई तो खाता है ना, भाई हम नहीं खाते हैं, मिट्टी भी खाती है ना, दिमक की मिट्टी खाती है, कई पक्षी ऐसे हैं जो भूख लगती तो कंकर भी खा जाते हैं, लकड़ी भी खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, ये सारी पृथ्वी अन्न है, और ये जल भी अन्न है, वायु अन्न है, अग्नि अन्न है, और आकाश तत्व भी। अन्नम ब्रह्म इति उपासित, समझ गए कि नहीं? अपने को लगता है कि ये तो छोटी सी बात हुई, हम लोग भोजन कर रहे हैं वो ब्रह्म है, नहीं, ये पांचों भूत अन्न है और वो ब्रह्म तत्व है। और एक बार आपने समझ लिया कि ये ब्रह्म है तो आपका व्यवहार बदल जाएगा। फिर मैंने आपको एक बार बताया था, एक महात्मा थे और वो अक्सर बहुत मस्त रहते थे, हमेशा मस्ती में रहते थे, अपनी किसी सोच में रहते थे, हम लोग तो उनको ब्रह्मज्ञानी मानते थे, और बहुत मजेदार, वो बीड़ी पीते थे, लेकिन अपने हाथ से कभी वो बीड़ी जलाते नहीं थे। तो हम बच्चे थे तो ले आते थे, बोले बेटा इसको सुलगा दोगे, इसको सुलगा दोगे? तो हम बोलते थे कि महाराज आप तो ब्रह्म हैं और आप बीड़ी पी रहे हैं। वो बोलते थे तुमको मालूम नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म को पी रहा है, ऐसा बोलते थे। और जब हम सुलगाते थे ना बीड़ी, तो बोलते थे ब्रह्म ही ब्रह्म को सुलगा रहा है, ऐसा बोलते। जब भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं, पूछते हैं कि महाराज आप तो ब्रह्म हैं, आप भोजन कर रहे हैं, ये ब्रह्म ही ब्रह्म को खा रहा है, भले खाने वाला भी वही है और जिसको खाया जा रहा है वो भी। अब एक बार यदि आपने अन्न को ब्रह्म समझ लिया तो फिर आपने अपने को समझ लिया ना, आपने अपने को समझ, ये शरीर भी मालूम पड़ा कि ये भी क्या है, ये भी ब्रह्म है। वो महात्मा जी की बात में कह रहा था, महात्मा जी कहते हैं कि भैया ये शरीर का भंडारा होगा, क्योंकि ये शरीर जो है ना ये अन्न है, भंडारा होगा, मछलियां खाएगी, और इसको जलाना नहीं है, इसको जंगल में कहीं रख देना है, इसे यदि गंगा जी में डालने का निषेध हो तो बोले ऐसे रख देना है। अपने को मालूम हो इसके अंदर जो भोजन करने वाला है वो भोक्ता भर्ता महेश्वर है, वही परमात्मा है जो ज्ञान देता भी है और ज्ञान का हरण भी कर लेता है, वही परमात्मा है जो हमें अन्न देता भी है और उसको लेता भी है, वो ग्रहण करने वाला भी वही है और आपको सारी चीजें देने वाला भी वही है। तम देवा सर्वे अर्पिता, ये सारी जो इंद्रियां है ना उसी परमात्मा में समर्पित हैं, आंख नाक कान, आंख भी खुलती है तो उसी के कारण और बंद भी होती है तो उसी के कारण ही अस्त और उदय है, हम आंख खोलते हैं उदय बंद हो गया अस्त, ये सारी चीजें जिस परमात्मा के कारण आत्मा के कारण होती हैं वही ब्रह्म तत्व है। नात्येति कश्चन, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, आत्मा को छोड़ के कोई हो ही नहीं सकता है। कोई आदमी सोचे कि भैया हम सारी चीजें कर लेंगे और आत्मा की जरूरत नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। वही ब्रह्म तत्व एतत् वही तत्व, वही तत्व है जो तुमने पूछा नचिकेता, वही तत्व है ब्रह्म तत्व। ओम शांति शांति।